अर्जुन ने सारा खाना खाया, फिर लास्ट में एक नज़र सृष्टि को देखने के बाद हलवे का बाउल उठाकर हलवा खाने लगा, जिसका एहसास सृष्टि को हुआ ही नहीं। अर्जुन ने हलवा खत्म किया, फिर उठते हुए सृष्टि को देखकर बोला, हलवा वाकई में काफ़ी अच्छा बना था, पर अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, जल्दी ही तुम्हारा ये पेंडिंग गिफ्ट तुम तक पहुँच जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। सृष्टि हैरान परेशान सी उसको देखती ही रह गई। अर्जुन के जाने के बाद उसने मन ही मन उसकी कही बातों को दोहराया और अगले ही पल हैरानगी से हलवे के कटोरे पर नज़र डाली तो वो पूरा खाली था। ये देखकर सृष्टि ने पलटकर जाते हुए अर्जुन को देखा और अनायास ही उसके लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। अमरजीत जी अर्जुन से रिसेप्शन पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पार्टी कब रखनी है और किस किस को इनवाइट करना है। सृष्टि अंश के साथ खेल रही थी, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन शान का था और दोनों काम को लेकर कुछ बात कर रहे थे। आखिर में सृष्टि ने शान को अपना काम अपनी असिस्टेंट फॉर हैंडओवर करने की बात कही और वजह ये थी कि अब वो ऑफिस नहीं आ सकती। शान ने भी उसकी बात मान ली और साथ ही ये भी कह दिया कि जब भी वो दोबारा अपना करियर आगे बढ़ाना चाहे तो आकर अपनी पोस्ट संभाल ले। सृष्टि ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी, फिर बाय बोलकर दोनों ने फ़ोन काट दिया। अर्जुन और अमरजीत जी दोनों ही उनकी बात सुन रहे थे। शान ने क्या कहा ये भले ही नहीं जानते थे, पर सृष्टि की जॉब छोड़ने वाली बात सुन चुके थे वो। अर्जुन ने तो कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही सृष्टि ने कॉल कट किया, अमरजीत जी ने तुरंत ही गंभीरता से कहा, सृष्टि बेटा, आपको ऑफिस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आपकी अब शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको खुद को घर गृहस्थी में ही लगा लेना है और अपने बने बनाए करियर को छोड़कर घर की चार दीवारी में कैद हो जाना है। आप में टैलेंट है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और जैसे शादी से पहले काम करती थी वैसे ही अब भी अपने काम को जारी रखिए। अमरजीत जी की बात को ध्यान से सुनने के बाद सृष्टि ने इनकार करते हुए कहा, नहीं डैड, अभी अंश बहुत छोटा है, इसलिए मैं अभी ऑफिस नहीं जा सकती। बच्चे को माँ का पूरा वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना उनकी परवरिश में कमी रह जाती है। अभी अंश को मेरी ज़रूरत है, इसलिए जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, समझदार नहीं हो जाता और स्कूल जाना शुरू नहीं कर देता, मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती। मैं अपना सारा वक्त उसे देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। आपकी जैसी इच्छा बेटा, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि जब भी आपको वापस अपना काम रिज्यूम करना हो हमें बता दीजिएगा, और अब आप जब भी काम करेंगी तो अपनी ही कंपनी में करेंगी। अपनी कंपनी से उनका मतलब सृष्टि बखूबी समझ रही थी। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, जी डैड। फिर कुछ पल ठहर कर उसने थोड़ा से कुचाते हुए आगे कहा, डैड, आज मुझे पकफीरे के लिए घर जाना है, तो क्या मैं अंश को अपने साथ ले जाऊँ? उसका सवाल सुनकर अमरजीत जी ने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है बेटा, अंश की माँ हैं आप, आपका उन पर पूरा अधिकार है। उनसे जुड़े फैसले लेने के लिए आपको ना तो हमने पूछने की ज़रूरत है और ना ही अर्जुन से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत है। आप लंच के बाद तैयार हो जाइएगा, अर्जुन आपको छोड़ आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है डैड, उन्हें बेवजह परेशानी होगी, भाई आ रहे हैं मुझे लेने। सृष्टि ने जैसे ही बात पूरी की, अमरजीत जी प्रसन्नता से बोले, ये तो अच्छी बात है, फिर अर्जुन आपको लेने चले जाएंगे, और इसके लिए आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब लड़की शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है तो पति को ही अपनी पत्नी को वापस लाने जाना होता है, ये रिवाज है, तो आपको भी इसे मानना ही होगा। सृष्टि ने सर झुकाकर हामी भर दी। शायद अमरजीत जी समझ रहे थे कि अर्जुन और सृष्टि के बीच सबब भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो किसी तरह उनके बीच सब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन कुछ देर रुका, फिर ऑफिस चला गया। दोपहर के लंच के बाद रेहान सृष्टि को लेने आया। तब तक सृष्टि ने अपना और अंश का सामान पैक कर लिया था। उसने अमरजीत जी के पैर छुए, फिर रेहान के साथ घर की निकल गई। वापस अपने घर जाकर वो बड़ी खुश थी। सबने उसको बहुत प्यार किया, अंश को भी खूब लाड किया, पर इतने अनजान लोगों को देखकर अंश कुछ देर तक वो सृष्टि से चिपका रहा, फिर धीरे धीरे उनके बीच खुल मिल गया। वृंदा जी ने सृष्टि से वहाँ के बारे में कुछ सवाल किए। सृष्टि ने अपने गृह प्रवेश और आज पहली रसोई वाली रस्म के बारे में उन्हें बताया और काफ़ी खुश नजर आई वो, जिससे सबके मन में जो एक शंका थी वो मिट गई। वृंदा जी ने न सिर्फ इस रिश्ते को बल्कि अंश को भी दिल से अपना लिया और उसकी नानी बनकर उसका ख्याल रखने लगी। अंश पहले तो शांत रहा, पर फिर जब सबको पहचान गया और उसने अपनी छोटी छोटी शैतानियाँ शुरू कर दी। दोपहर से शाम अंश और सृष्टि के साथ कब हुई किसी को मालूम ही नहीं चला। वृंदा जी ने रजनी जी के साथ मिलकर डिनर में आज सृष्टि की पसंद की हर चीज़ बनाई। सबने साथ ही डिनर किया और खाते हुए अंश ने सृष्टि को खूब परेशान भी किया, पर सृष्टि ने एक बार भी उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसकी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर मुस्कुरा देती। डिनर के बाद सृष्टि ने अंश को सेरेलैक्स खिलाया, फिर उसको दूध पिलाया, तो सारे दिन की शैतानियों के बाद वो दूध पीते ही सो गया। अंश के सोने के बाद सृष्टि काफी देर तक रश्मि के साथ बैठकर बातें करती रही, जिसमें अर्जुन की बात भी उठी, पर सृष्टि इस पर खामोश रह गई तो रश्मि ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब ये उनका रिश्ता था तो बेहतर था कि दोनों मिलकर ही सब सुलझा ले। कहीं ना कहीं सृष्टि को आज खुश देखकर रेहान के मन में जो शंका थी वो भी मिट गई थी। जहां सृष्टि आज अपने परिवार के पास आकर बड़ी खुश थी और अंश की अपनी बाहों में समाये सुकून की नींद में सोई थी, वहीं अर्जुन वहां बेचैनी से करवटें बदल रहा था। सृष्टि उससे नाराज थी, इतना ही नहीं वो अपने साथ अंश को भी ले गई थी, जबकि अर्जुन को अंश के साथ सोने की आदत थी। बीती रात भी वो ठीक से सो नहीं पाया था और आज तो ऑफिस से आने के बाद से ना उसको देखना नसीब हुआ था और ना ही उसकी प्यारी प्यारी मीठी सी आवाज ही सुनी थी, इसलिए उसका मन व्याकुल था। जैसे तैसे रात कटी और अगला दिन शुरू हुआ। आज सृष्टि ने नहीं, वृंदा जी ने अंश की अच्छे से मालिश करके नए कपड़े पहनाकर काजल वाजल लगाकर उसको तैयार कर दिया था। रजनी जी ने उसके लिए नमक वाला दलिया बनाया था और अपने ही हाथ से खिलाया भी था। अंश के साथ रश्मि भी बच्चे को संभालने की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि कुछ महीनों बाद उसे भी अपने बच्चे को संभालना ही था। दोनों आदमियों को तो एक छोटा जीता जागता खिलौना मिल गया था और नाना बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रेहान तो इतना बेसब्र था कि उससे मामू बुलवाने में लगा था। सृष्टि बस सबको देख रही थी, कैसे एक बच्चे के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। सभी खुश थे। दिन यूं ही बीत गया। शाम को अर्जुन अंश और सृष्टि को लेने आया। घर के दामाद की खूब आवभगत की गई। उसके स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। अर्जुन का व्यवहार भी सहज रहा, जिससे सभी प्रभावित हुए। सबके सामने सृष्टि ने भी अर्जुन से ठीक ही व्यवहार किया, ताकि कोई उनके रिश्ते को लेकर कुछ गलत ना सोचे और बेवजह परेशान ना हो। शाम को वो आया ही था, बातों बातों में रात हो गई। इस दौरान अंश उससे चिपका रहा। वृंदा जी के आग्रह पर अर्जुन ने सबके साथ ही डिनर किया और उसके बाद सबने उसको रात भर रुकने के लिए फोर्स करने लगे। अर्जुन आया था कि अंश और सृष्टि को लेकर वापस चला जाए, पर इतने लोगों की बात को वो टाल नहीं सका।
अर्जुन ने अमरजीत जी को इन्फॉर्म कर दिया कि कल सुबह दोनों को वापस लेकर आएगा और उन्होंने हामी भी भर दी। कुछ देर अर्जुन सबके साथ ही बैठा, जबकि अंश उसकी गोद में ही सो गया था। उसके बाद अभिजीत जी ने उसे भी आराम करने को कह दिया। रेहान उसे सृष्टि के रूम में ले गया, जहां सृष्टि पहले से सो रही थी या बस सोने का नाटक ही कर रही थी। अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया, फिर बेड की तरफ बढ़ गया। आज पहली बार वो सृष्टि के रूम में आया था और सृष्टि का रूम उसके नेचर के हिसाब से काफ़ी एंटरटेनिंग और कलरफुल था। अर्जुन ने अंश को बेड पर सुलाया, फिर सोती हुई सृष्टि को एक नज़र देखने के बाद दूसरे तरफ लेट गया। शादी के बाद आज पहली बार दोनों एक रूम में एक बेड शेयर कर रहे थे। अर्जुन काफी देर तक उसको देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और सोनी निगाहों से कुछ पल उसको देखती रही, फिर करवट लेकर आंखें बंद कर ली। दोनों ही आंखें बंद करके लेटे थे, पर सोए थे या नहीं ये कह पाना जरा मुश्किल था। अगले दिन सुबह अर्जुन सृष्टि को विदा करवाकर वापस ले गया। सारा रास्ते सृष्टि अंश के साथ खेलती रही और घर पहुंचने पर बिना अर्जुन को देखे ही अंदर चली गई। अर्जुन ने उनका सामान अंदर छोड़ा, फिर ऑफिस निकल गया। सृष्टि अंदर अमरजीत जी के पास चली गई। कुछ देर अर्जुन का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो मायूस हो गई। आज का दिन सृष्टि का अमरजीत जी और अंश के साथ बीता और अर्जुन काम में व्यस्त रहा। शाम का वक्त था। इस वक्त सृष्टि अंश के साथ रूम में थी। अंश बेड पर लेटा हुआ था और सृष्टि उसके साथ खेल रही थी। सृष्टि ने उसको टॉय पकड़ने को कहा और टॉय को उसके सामने लहराते हुए उसको चिढ़ाने लगी। अंश ने पहले तो अपने हाथ चलाते हुए टॉय पकड़ने की कोशिश की, फिर शरारत दिखाते हुए उसने सृष्टि के बाल को ही पकड़ लिया और मुस्कुराने लगा। ये देखकर सृष्टि ने टॉय साइड में रखा और अंश पर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, बदमाश, बाल पकड़कर कैसे मुस्कुरा रहा है? बाल छोड़ो, नहीं तो आज आपकी पिटाई होगी।